आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हम सभी भक्तों के लिए। बारिश बहुत तेज हो रही है, ध्यान से सुनेगा। वो आज श्रील रूप गोस्वामी पाद का तिरुभाव दिवस है और साथ में गौरीदास पंडित का भी तिरुभाव दिवस है। तो हम लोग संक्षेप में थोड़ा सा कहेंगे, क्योंकि अगर ना कहें तो फिर अपराध लगेगा, है ना। कोई भी वैष्णव का आविर्भाव या तिरुभाव होता है तो ये हमारा कर्तव्य है कि उस दिवस में हम लोग उनका गुणगान करें, और गुणगान नहीं करते हैं तो हम लोग कर्जे में पड़ जाते हैं। फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है इन सभी वैष्णव आचार्यों का, और उनके आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस के दिन हमें यह मौका मिलता है कि हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें इन वैष्णव आचार्यों को, ताकि हमें इन सभी वैष्णवों की अपार कृपा प्राप्त हो। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस के दिन हम लोग प्रत्यक्ष इन वैष्णव आचार्यों से सीधे प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं। तो ये विशेष कृपा होती है आविर्भाव और तिरुभाव दिवस के दिन। तो श्री रूप गोस्वामी पाद, हम जानते हैं कि हम सभी जो वैष्णव हैं, श्रील प्रभुपाद ने उपदेशामृत में लिखा है कि हम सब क्या हैं, रूपानुग वैष्णव हैं, यानी कि हम सब श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य होकर उनकी शिक्षाओं को अपनाकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापिताम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। तो इसका अर्थ है श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाल मुझे कब अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है। नरोत्तम दास ठाकुर की यह प्रार्थना है, नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी के लिए प्रार्थना की। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट जो है वो कौन जानते हैं, श्री रूप गोस्वामी जानते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया पूरे पृथ्वी में। और तो ये प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि श्री रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करें। तो श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के मनोभीष्ट को कैसे जानते हैं, क्योंकि महाप्रभु के हृदय में श्री रूप गोस्वामी विराजमान हैं, उनके हृदय में। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मेरा वैष्णव प्राण। नरोत्तम दास ठाकुर एक जगह क्या कह रहे हैं कि आपके हृदय में कौन वास करते हैं, गोविंद वास करते हैं, और गोविंद कहते हैं कि मेरे हृदय में मेरा भक्त वास करता है। तो महाप्रभु के हृदय में सदैव श्री रूप गोस्वामी वास करते हैं, और महाप्रभु के हृदय की जो भावनाएं हैं वो अंतरंग भावनाएं हैं, श्री रूप गोस्वामी अच्छी तरह से समझते हैं। और उन्होंने इस भूतल पर स्थापित किया। आप पूछेंगे भूतल पर कैसे स्थापित कर दिया, वो तो भारतवर्ष छोड़ के गए नहीं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद को क्या बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया, और चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूरे पृथ्वी में स्थापित किया। बल्कि श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील रूप गोस्वामी सबसे प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं श्रील रूप गोस्वामी के, और श्रील प्रभुपाद ने श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को कैसे स्थापित किया, महाप्रभु के मनोभीष्ट को कैसे स्थापित किया, ग्रंथों का प्रकाशन करके। श्रील रूप गोस्वामी के ग्रंथों का प्रकाशन करके श्रील प्रभुपाद ने महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया है पूरे पृथ्वी में। विशेष रूप से दो ग्रंथ का प्रकाशन किया प्रभुपाद ने, कौन से ग्रंथों का बताइए, दो कौन से ग्रंथ हैं प्रभुपाद ने जो प्रकाशित किए हैं, एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है उपदेशामृत। भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? भक्ति रस, भक्ति रसामृत का सागर है। ये भक्ति रस रसामृत का सागर, यानी कि भक्ति रसामृत को उसकी तुलना सागर से की है श्री गुरु गोस्वामी, और इसलिए इसकी व्याख्या की है उस रस को, भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता है, क्या प्रक्रिया है, वो श्री रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ में बताया है। जब ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1970 या 1971 में, तो प्रभुपाद ने जब इस पुस्तक को प्रकाशित किया तो किताब को अपने हाथ में लेके बोले प्रभुपाद कि दिस इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। प्रभुपाद ने दिस इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स, यानी कि इस ग्रंथ में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नियम बताए गए हैं, कानून बताया गया है, जो इस ग्रंथ के बाहर रहकर तथाकथित भक्ति साधना का अभ्यास करेगा वो क्या है, गैर कानूनी माना जाएगा अगले 10,000 साल के लिए कम से कम, क्योंकि आगे 10,000 साल के बाद क्या होगा। प्रभुपाद से पूछा 10,000 साल के बाद क्या होगा, प्रभुपाद ने कहा नो हरे कृष्णा, उसके बाद फिर कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार नहीं होगा 10,000 साल के बाद। और इस तरह से ब्रह्मवर्त पुराण में और यहां तक कि चाणक्य पंडित ने भी अपने नीति शास्त्र में बताया है कि 10,000 साल तक ये कृष्ण भावना का आंदोलन चलेगा। और ये आंदोलन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि महाप्रभु के व्यक्तिगत निरीक्षण में चल रहा है हमारा ये आंदोलन, और इन महान आचार्यों ने महाप्रभु की इच्छाओं को पूरा किया है। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्तिनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ श्रील प्रभुपाद, और वर्तमान जितने भी हमारे वैष्णव हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के अनुयायी जो आने वाले भक्त हैं, वो पूरी पृथ्वी में महाप्रभु के संदेश को पहुँचा रहे हैं, महाप्रभु की भविष्यवाणी को सच कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप दिया है, इस कारण से भी वो रूप गोस्वामी कहलाते हैं। जिन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप दिया वो है रूप गोस्वामी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु जब भी कथा करना चाहते तो वो भाव की दशा में होते, इसलिए वो कथा नहीं कर पाते। जगन्नाथ जी का नाम भी पूरे रूप से वो उच्चारण नहीं कर पाते, जगह जगह करके बोलते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी पार्षद, विशेष रूप से जो छह गोस्वामी हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, तो ये जो छह गोस्वामियों को महाप्रभु ने विशेष शक्ति दी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए, और उसमें प्रमुख श्रील रूप गोस्वामी को विशेष शक्ति दी कि महाप्रभु की जो शिक्षाओं को प्रस्तुत करें। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्राप्त की प्रयाग में 10 दिन, जब श्रील रूप गोस्वामी और उनके साथ उनके भाई अनुपम गोस्वामी ये दोनों गए थे प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिलने, तब चैतन्य महाप्रभु वेणी माधव, वेणी माधव मंदिर में जाके चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर बड़े उच्च स्वर से कीर्तन किया, नृत्य किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु हजारों भक्तों के साथ वहां नृत्य कीर्तन कर रहे थे, हजारों की तादाद में वहां भक्त एकत्र थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, और ऐसे में श्रील रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी वहां पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, और महाप्रभु के समक्ष जब पहुंचे तो श्रील रूप गोस्वामी ने क्या किया, महाप्रभु को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए क्या बोला श्रील रूप गोस्वामी ने, बोलिए क्या बोला, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिश्वे नमः। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जब महाप्रभु को प्रणाम करते हैं तो हम लोग
इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप महावदन्याय हैं, आप क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए। हे परम करुणामय अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधारानी का घोर वरण धारण किया है और आप कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का सर्वत्र वितरण कर रहे हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने ये जो प्रणाम मंत्र बोला महाप्रभु को प्रणाम करते हुए, तो महाप्रभु क्या प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप कृष्ण प्रेम, आप स्वयं कृष्ण हैं और स्वयं ही अपना प्रेम बांट रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार तो महाप्रभु के जो पार्षद हैं ये छह गोस्वामी, इन्होंने बीड़ा उठाया और इनको आगे देकर चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में भेजा और आज्ञा दी कि वृंदावन जाकर वहाँ जाकर वो ब्रज में जो लीला स्थलियाँ हैं उनका पता लगाएं और साथ में अर्चे वगैरह की स्थापना करें, मंदिरों का निर्माण करें और साथ में ग्रंथों की रचना करें, प्रकाशन करें। तो श्रील रूप गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे जिसमें भक्ति रसाम सिंधु, उपदेशामृत, उज्ज्वल नीलमणि, इस तरह के कई ग्रंथ, ललित माधव, विदग्ध माधव, तो ये सब ग्रंथों की श्रील रूप गोस्वामी ने रचना की और लीला स्थलियों का पता लगाया। और एक बार की बात है जब श्री रूप गोस्वामी सेवापुंज में थे और वहाँ पे अन्य गोस्वामियों के साथ भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा कर रहे थे भागवत कथा का, तो सारे गोस्वामी लोग एकत्रित थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो स्वाभाविक था कि ये जो गोस्वामी सब तो प्रेम की दशा में थे, ये जितने भी गोस्वामी हैं क्या है, नित्य परिकर हैं, धाम से आए हैं, भागवत का श्रवण करते ही ये लोग भाव की दशा में आ गए। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी बिल्कुल स्तब्ध बैठे रहे, तो ये देखने के लिए कि श्रील रूप गोस्वामी को क्या हुआ, स्तब्ध बैठे हुए हैं, अचेत अवस्था में लगते हैं। तो फिर उनके नाक के पास जाके रुई लगाई किसी ने, भक्त ने नाक के पास रुई लगाकर देखा, तो जैसे ही रुई पास रखी रूप गोस्वामी के नाक के पास तो वो रुई जल पड़ी, उसमें आग लग गई, श्री रूप गोस्वामी का शरीर तप रहा था। तो ये था उनका भागवत श्रवण करने का स्तर। हम भी स्तब्ध हो जाते हैं कई बार, लेकिन निद्रा के कारण। तो इस प्रकार देखिए, तो ये इस प्रकार श्रवण की इनकी दशा थी। तो श्रील रूप गोस्वामी सेवा कुंज में रहते, वहाँ ग्रंथों की रचना करते। श्रील प्रभुपाद भी सेवा कुंज में ही रह रहे थे अमेरिका जाने से पहले, और प्रभुपाद लिखते हैं सेवा कुंज के बारे में कि सेवा कुंज जो है आध्यात्मिक जगत का क्या है, हब है। हब, हब का मतलब जानते हैं, जो चक्र होता है, पहिया होता है, उसके जो बीच का हिस्सा है उसको हब कहते हैं। तो जिस तरह से इस ब्रह्मांड का जो हब है वो नैमिषारण्य है लखनऊ के पास जो है, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन का जो हब है, बिल्कुल मध्य में जो बीच में जो स्थान है वो है सेवा कुंज। और प्रभुपाल ने कहा कि उस स्थान से पूरे पृथ्वी में कृष्ण भावना का प्रचार हो। जब कोई स्थान, जब मान लीजिए किसी स्थान में, किसी स्थान के मध्य में आप कुछ डालते हैं जोर से, कोई पत्थर डालते हैं मान लीजिए, तो क्या होता है, बिल्कुल बीच में अगर डालेंगे तो क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से इस मध्य में कृष्ण भावना की का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीच में है, और क्योंकि कृष्ण भावना का प्रभाव सबसे अधिक है वहां पर, वहां से कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार बड़े तेजी से चारों की तरफ फैलेगा, प्रभुपाद ने इस तरह से कहा। तो प्रभुपाद वहां पर रहते थे, ग्रंथों की रचना करते थे। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद ने अपने एक सर्वेंट को बताया, प्रभुपाद अचानक बोले तुम जानते हो मुझे सेवा कुंज में श्रील रूप गोस्वामी ने, श्रील सनातन गोस्वामी ने, श्रील जीव गोस्वामी ने, इन सब ने मुझे दर्शन दिया और मुझे आज्ञा दी कि मैं इन ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करूं, जैसे कि भक्ति रसाम सिंधु, चैतन्य चरतामृत। और उन्होंने ये भी कहा मुझे, श्रील रूप गोस्वामी ने, कि जब जब मैं भक्ति रसाम सिंधु का पाठ करूंगा, चैतन्य चरतामृत का पाठ करूंगा, तो समझना कि मैं बिल्कुल तुम्हारे नज़दीक खड़ा हूँ। और तुम्हारे द्वारा, श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने उनको कहा कि तुम्हारे द्वारा ये महान कार्य होगा। कौन सा कार्य? पृथ्वी ते यथयाचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। तो श्रील रूप गोस्वामी ने प्रभुपाद को बोला, अब उस सेवक ने सुन लिया, प्रभुपाद जी के सर्वेंट ने, उन्होंने जाकर बता दिया किसी और को। अब क्या है कि हमारे आंदोलन की खूबी है कि कोई बात हम लोग पचा नहीं पाते, जो खाते हैं वो निकल जाता है, यानी कि जो सुनते हैं वो भी बाहर आ जाता है। तो ये प्रचार का मतलब ही है डकार। अब डकार का अर्थ क्या होता है जानते हैं? जब पेट भर जाता है तो डकार आती है। तो इसका क्या मतलब क्या है? जितना अधिक आप श्रवण करेंगे, जितना अधिक आपका भजन पकता जाएगा अंदर से, उतना अधिक भार निकलता जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा खा लेता है और पाचन क्रिया उसकी बिगड़ जाती है, तो क्या होता है, क्या संभावना होती है? उल्टी होती है, या फिर क्या होता है, डकार आती है। तो इसी तरह से भक्त जब बहुत अधिक साधना और श्रवण अध्ययन करते हैं, सुनते रहते हैं नियमित रूप से, साधना में परिपक्व होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो चुप नहीं रह सकते। जो श्रवण करेगा निश्चित रूप से वो कीर्तन करेगा ही करेगा। जिसने श्रवण किया है वो कीर्तन करेगा, यानी कि कहने का अर्थ है जो श्रवण नहीं करता वो कीर्तन नहीं कर सकता, और बिना श्रवण के जो कीर्तन कर रहा है या प्रचार कर रहा है वो बिल्कुल एक दिखावा है। प्रभुपाद को क्या बोला उनके गुरु महाराज ने, ये जो भक्त है, ये शिष्य है मेरा, ये क्या है, सबसे अच्छा प्रचार कर पाएगा, सबसे अच्छा बोल पाएगा, क्योंकि ये बहुत ध्यान से सुनता है। प्रभुपाद कहते थे मुझे समझ में नहीं आता था मेरे गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, कई शिष्य उठ के चले जाते थे तो हम लोग समझ नहीं पाते थे कई उनकी बातें, उनकी भाषा इतनी ज़्यादा कठिन होती थी समझने, लेकिन प्रभुपाद के फिर भी मैं बैठा रहता था तो उनके गुरु महाराज की प्रशंसा करते थे प्रभुपाद। तो इसी तरह से श्रील रूप गोस्वामी की विशेष कृपा हुई श्रील प्रभुपाद के ऊपर। तो ये जब शिष्य ने सुना उस भक्त से, उस सेवक से, प्रभुपाद जी के सर्वेंट से, तो प्रभुपाद से जाके पूछा कि प्रभुपाद क्या आपने बताया कि आप ने श्रील रूप गोस्वामी के दर्शन किए और उनसे सुना? तो प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? कि क्या ये जो मेरा सेवक है सबको जाके बता रहा है? तो प्रभुपाद कहते सब जानते हैं, तो एवरी वन नोज दैट। तो प्रभुपाद खुश नहीं हुआ है कि ढिंडोरा पीट रहा है वो सब जगह जाके कि प्रभुपाद ने ऐसा कहा, प्रभुपाद ने ऐसा कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि श्री रघु स्वामी के बहुत ही गुह्यतम सेवक, महाप्रभु के बहुत ही गुह्यतम सेवक हैं श्रील प्रभुपाद। इसलिए श्रील रूप प्रभुपाद क्या है, रूपानुग बराए थे। जैसे भक्तिनो ठाकुर के लिए भी कहा जाता है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा बराए थे। आप रूपानुग में श्रेष्ठतम है, भक्तिनो ठाकुर के लिए कहा जाता है। तो इसी तरह से हमारे श्रील प्रभुपाद भी। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रभुपाद ने उन महान आचार्यों की इच्छा पूरी की है, महाप्रभु की इच्छा पूरी की है, और श्रील रूप गोस्वामी और ये जितने भी गोस्वामी हैं उन सब की कृपा से आज हमें ये साधन भक्ति के जितने भी अंग हैं उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जो भी साधना भक्ति हम करते हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, वो सब श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया है। श्रील रूप गोस्वामी ने जिस तरह से प्रेम की व्याख्या की है, भगवत प्रेम की व्याख्या की, उस तरह से, उस प्रकार की व्याख्या उससे पहले किसी भी वैष्णव आचार्य ने नहीं की अन्य संप्रदाय में। तो श्रील रूप गोस्वामी पहले आचार्य जिन्होंने इतना विस्तार से व्याख्या किया, उन्होंने ये भी बताया कि प्रेम के आगे भी कुछ होता है, ये केवल श्रील रूप गोस्वामी ने बताया। तो श्रील रूप गोस्वामी का बड़ा योगदान है और श्री रघु गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिंधु में ग्रंथ में बताया है किस तरह से हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए साधन भक्ति करते हुए साधन भक्ति के द्वारा हम लोग किस प्रकार भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। भक्ति रसाम सिंधु जो ग्रंथ है, उपदेशामृत जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों को हमें पढ़ना पड़ेगा। इन ग्रंथों को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि भक्ति कैसे की जाए। भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ में एक अध्याय है, उस अध्याय का शीर्षक दिया गया है, प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं, हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, इंग्लिश में टाइटल ये दिया है। हिंदी में बड़ा अच्छा अनुवाद किया है, हिंदी में अनुवाद किया गया, भक्ति कैसे की जाए, उस अध्याय का शीर्षक है। तो भक्ति कैसे की जाए ये अगर हमें नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे भक्ति, और भक्ति कैसे की जाए अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग बाहर से कभी भी विचलित नहीं होंगे अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए ये जो ग्रंथ है उसको बहुत गंभीरता से पढ़ें और सही मार्गदर्शन में पढ़ेंगे, भक्तों के माध्यम से इन ग्रंथों को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिले। तो श्रील रघु गोस्वामी ने हमें बताया है कि सबसे पहले हमें वैदिक साधन भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, जैसे ब्राह्म मुहूर्त में उठ के हमें गुरु अष्टकम का पाठ करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए, फिर हमें महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, और नियमित रूप से मंदिर में जाकर अर्चे वगैरह का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो है वो धाम से अभिन्न है। तो इसलिए प्रभुपाद ने जितना सुचारू रूप से श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को स्थापित किया है व्यवहारिक रूप से, वो किसी ने नहीं किया। जैसे कि साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति सेवा श्रद्धाया सेवन, यह है पांचांग भक्ति। 64 भक्ति के अंगों में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यह पांचांग भक्ति है, सबसे शक्तिशाली है, प्रभावशाली। पहला क्या है, साधु संग। तो हम लोग क्या करते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं। हर इस्कॉन के केंद्र में हम क्यों जाते हैं, भक्तों का संग प्राप्त। फिर क्या हम लोग क्या करते हैं, नाम संकीर्तन। जितना नाम संकीर्तन हमारी संस्था के माध्यम से हो रहा है किसी भी संस्था के माध्यम से नहीं हो रहा है। जितना हरि नाम नगर संकीर्तन हम लोग निकालते हैं और कोई संस्था नहीं निकाल रही है पूरे विश्व स्तर पर। पृथ्वी के हर कोने में जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से आज नगर नगर गांव गांव हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। तो देखिए प्रभुपाद ने किस तरह स्थापित किया, पांचांग भक्ति की स्थापना की है। एक बार हमें पंचशील में रहने का मौका मिला, पंचशील। भगवान बुद्ध ने पांच शिक्षाएं ली थी उन्होंने भी, वो पांच शिक्षाएं ठीक तरह से याद नहीं है लेकिन हमारे जो चार नियम है उससे मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से पांच नियम उन्होंने दिए, तो इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया पंचशील। तो हमें किसी ने सुझाव दिया कि आप पंचशील में रह रहे हैं तो पंचशील में रहकर आप पांचांग भक्ति का आप वहां अभ्यास करें। तो फिर हमें समझ में आया कि जैसे प्रभुपाद ने कितना अच्छा बताया है पांचांग भक्ति किस तरह से व्यवहारिक रूप से स्थापित किया है। भागवत श्रवण अगला क्या है, भागवत श्रवण नित्यम भागवत सेवया। ये तो हम श्लोक सुनते आ रहे थे भागवत में, लेकिन प्रभुपाद के आने के बाद प्रभुपाद ने इस्कॉन के सभी केंद्रों में प्रत्येक दिन भागवत सुनने का सुअवसर प्रदान किया है। भागवत का श्लोक रोज लिखा जाता है, अभी तो बलराम जी की कथा चल रही है वो भी भागवत से है कि नहीं। तो ये नित्यम भागवत सेवा अगर आप कहीं देखते हैं तो केवल आप केवल 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 इस्कॉन में देखेंगे आप, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज। और प्रकार की कथाएं होती है लेकिन जो हर श्लोक को लेना, एक एक श्लोक को लेना, उसका शब्दार्थ पढ़ना, उसका अनुवाद पढ़ना, उसका तात्पर्य पढ़ना, ये केवल हमारी संस्था में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। ये तो हो गया ना भागवत श्रवण, भागवत श्रवण, हरे कृष्ण, भागवत श्रवण। और उसके बाद क्या, मथुरावास। अब बोलेंगे मथुरावास इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सबको अपने अपने मंदिर छोड़कर मथुरा चले जाना चाहिए, ब्रज में जाके रहना चाहिए। तो प्रभुपाल ने क्या बोला, अवर टेम्पल्स आर नॉट इन न्यूयॉर्क, बॉम्बे, कैलकटा, बट अवर टेम्पल्स आर इन वैकुंठा। किसने बोला ये? प्रभुपाल ने बोला। प्रभुपाल ने कहा कि हमारे मंदिर न्यूयॉर्क में नहीं है, बंबई में नहीं है। प्रभुपाल ने कहा हमारे मंदिर कहाँ है? वैकुंठ में है। ये वैकुंठ है, गोलोक है, राधिका रमण जी यहाँ विराजमान है, कृष्ण बलराम यहाँ विराजमान है, ये साक्षात गोलोक वृंदावन धाम है। और ठाकुर भक्तिविनोद ने क्या बोला, जब मैं देखता हूं कि घर में भजन होता है, किसका? कृष्ण का, राधा कृष्ण का भजन होता है, तो मेरा घर क्या बन जाता है? गोलोक वृंदावन बन जाता है। तो आप लोग निराश मत होइए जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं। अगर आप अपने घर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, प्रत्येक दिन भागवत का अध्ययन करेंगे, पांचांग भक्ति के का नियमों का पालन करेंगे, तो आपका घर भी वृंदावन है। तो देखिए इस तरह से फिर क्या अगला क्या है, श्री मूर्ति सेवा श्रद्धाया सेवन। जिस श्रद्धा से हमारी संस्था में अर्चे वगैरह की सेवा हो रही है, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो स्टैंडर्ड श्रील प्रभुपाद ने दिया है अर्चे वगैरह की सेवा का, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना सुंदर श्रृंगार, समय पर दर्शन खुलना, समय पर भोग लगना, समय पर आरती होना, मंदिर साफ रखना, है कि नहीं? ये केवल हमारी संस्था में होता है, ये श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा। तो पांचांग भक्ति की स्थापना व्यवहारिक रूप में स्थापित किया श्रील प्रभुपाद। बोले श्रील प्रभुपाद की। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम सब भक्त लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिला है कि हम लोग प्रभुपाद की सेवा में लग सके। तो इस प्रकार ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। और गोविंद देव जी का शिव विग्रह प्राप्त हुआ उनको गोमती टीला में, योगपीठ जहाँ पर वृंदावन में अभी राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। तो एक बार श्रील रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे, उस समय एक ब्रजवासी ने आके बताया कि उस टीला में क्या हो रहा है, प्रत्येक दिन गाय आती है और वहाँ खड़ी होती है, और वहाँ पे उस गड्ढे में, उस टीले के ऊपर एक गड्ढा है, उसके अंदर दूध दे जाती है। बोलते आश्चर्य की बात है, गाय दूध दे जाती है। तो बोलते ठीक है चलो मेरे साथ देखता हूँ। तो श्रील रूप गोस्वामी वहां पर गए और जब देखा ये दृश्य तो वो आश्चर्यचकित हो गए, और उन्हें क्या किया, उसको खुदवाया। और जब उसके भीतर गए तो वहां पर क्या उन्होंने दर्शन प्राप्त किया, गोविंद देव जी का दर्शन प्राप्त किया। बोलिए श्री श्री राधा गोविंद देव की। तो ये गोविंद देव जी महाराज वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किए गए थे आज से 5000 साल पूर्व। राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ वृंदावन के सबसे पहले विग्रह स्थापित हुए थे राधा मदन मोहन जी, और उसके बाद गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। तो गोविंद देव जी का दर्शन, जिनकी सेवा लगातार 500 साल से ज्यादा चल रही है, उनका दर्शन आज भी आप प्राप्त कर सकते हैं जयपुर में। और ये विग्रह 5000 साल नया है, 5000 साल नया है, पुराना नहीं। तो आज भी आप जाके गोविंद देव जी का दर्शन करिए तो आपको लगेगा कि आज ही बनाया गया है। कितना ठाट बाट से वहां पर राधा गोविंद देव जी की सेवा हो रही है। तो गोविंद देव जी की स्थापना की श्रील रूप गोस्वामी ने, बाद में फिर श्रीमती राधारानी भी आए उनके साथ, उनकी स्थापना भी हुई। बाद में फिर कोई व्यापारी आए और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव जी के लिए बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण कराया, 7 मंजिला वो मंदिर था, और वहाँ पर राधा गोविंद देव जी की सेवा प्रारंभ हुई। और स्थापना करने के बाद श्रील रूप गोस्वामी फिर से भजन करने चले जाते। ये था इनका विराग, इसको कहते हैं युक्त विराग। और एक और शिक्षा क्या है श्रील रूप गोस्वामी की, युक्त विराग अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, युक्त वैराग्य मुच्यते। ये युक्त वैराग क्या है? युक्त वैराग का मतलब यह है कि विषयों से अनासक्त होना और साथ में जिनका संबंध श्री कृष्ण है से है उनको कृष्ण की सेवा में लगाना। इसको कहते हैं युक्त वैराग। अब आप बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है पाप कार्यों को छोड़कर, और कौन वो महान भक्त हैं जिन्होंने युक्त वैराग की स्थापना पूरे विश्वभर में की है? किसने की है? श्रील प्रभुपाद, और किसी ने नहीं की। हाँ, इससे पहले, सबसे पहले हमारी परंपरा में ठाकुर भक्तिविनोद पहले महान आचार्य हैं जो सबसे पहले ट्रेन में चढ़े। हाँ, और उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने थोड़ा और आगे बढ़े। वो गाड़ी में बैठ के गए वृंदावन, और वहां के जो गोस्वामी थे, जात गोसाई जिनको कहते हैं, जो जन्म से गोसाई होते हैं, तो वहां के जो वृंदावन के जो गोस्वामी थे और जो ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण, उन्होंने आरोप लगाया कि आप सन्यासी होकर गाड़ी में आ रहे हो वृंदावन। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा नहीं है, सन्यासी होकर आप गाड़ी में बैठ के आ रहे हो। उस समय ब्रिटिश जमाने की गाड़ी थी और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसमें बैठ के आए थे गाड़ी में। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, मैं आप लोगों को युक्त वैराग्य सिखाने के लिए आया हूं। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद तो और आगे बढ़ गए। प्रभुपाद हवाई जहाज में चले गए, है ना। उन्होंने हवाई जहाज का उपयोग किया और पूरे पृथ्वी में, इसलिए प्रभुपाद लीलामृत में एक अध्याय है, उसका नाम है जेट एज परिव्रज का आचार्य, जेट एज परिव्रज का आचार्य। तो उसके बाद उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके शिष्य भी उड़ते ही जाते हैं, कभी नीचे उतरते नहीं मुश्किल से, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं और हिसोलेनाथ जयपताका महाराज हैं। तो जयपताका महाराज, हिसोलेनाथ जयपताका महाराज को तो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ गया है। अब जानते हैं कि सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले अगर कोई व्यक्ति है हवाई जहाज में इस पृथ्वी में, वो ये है महाराज, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। यानी किसी भी एक स्थान में वो दो दिन से ज्यादा नहीं रुकते। तो ये सब शक्ति है, कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। जब तक महाप्रभु की शक्ति नहीं होगी, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है कि निद्रा और आहार के ऊपर विजय पाकर दिन रात जो है कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करे। ये तभी हो सकता है जब महाप्रभु की इच्छा हो, और प्रभुपाद ने शक्ति दी है अपने शिष्यों को। तो हम देख सकते हैं कि हम ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से प्रभुपाद ने श्रील रूप गोस्वामी के इच्छाओं को पूरा किया, परंपरा के आदेश का पालन किया, और कैसे युक्त वैराग की स्थापना की, वो हम लोग सीख सकते हैं प्रभुपाद से। तो ये कुछ श्रील रूप गोस्वामी के बारे में बताया कि 1564 में श्रील रूप गोस्वामी, आज के दिन श्रील रूप गोस्वामी जो है नित्य लीला में प्रवेश किए, राधा गोविंद जी के नित्य लीला में, और सनातन गोस्वामी के ठीक 27 दिन के जाने के बाद, 27 दिन हो गए श्रील सनातन गोस्वामी को शरीर छोड़े, 27 दिन हो गए, तो श्रील रूप गोस्वामी ने फिर उन्होंने भी देह का परित्याग किया। श्री वृंदावन धाम में सेवा कुंज में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में उनकी समाधि है और उनका भजन कुटीर है। प्रभुपाद रोज प्रत्येक दिन वहाँ जाकर उनकी समाधि में अगरबत्ती जलाते और प्रभुपाद वहाँ बैठकर रोज कीर्तन करते जब प्रभुपाद मंदिर में थे। और प्रभुपाद बोलते कि रोज आपका इतने सारे भक्त लोग आपका दर्शन करने आते हैं, लेकिन शायद ही आप वास्तव में प्रत्यक्ष आप किसी को दर्शन देते हैं, तो मुझे आप कब दर्शन देंगे, मेरे ऊपर कब ये कृपा होगी। तो इस तरह से श्रील रूप गोस्वामी का दर्शन प्राप्त किया श्रील प्रभुपाद ने सेवा कुंज में, राधा मोदर मंदिर। तो ये थे श्रील रूप गोस्वामी के बारे में। ये तो बहुत ही हमने प्रयास किया है संक्षेप में वर्णन किया जाए, कि समय कम है, अभी तो बलराम जी कथा भी नहीं प्रारंभ कर पाए हैं। तो गौरीदास पंडित ये भी एक महान आचार्य हुए हैं, और श्री कृष्ण लीला में ये सखा हैं, गोचारण लीला में ये सुबल सखा हैं, सुबल सखा द्वादश गोपालों में से एक। तो गौरीदास पंडित के बारे में लिखा है, ही हैड द ग्रेटेस्ट पोटेंसी टू रिसीव एंड डिलीवर सच लव, मेकिंग लॉर्ड चैतन्य, लॉर्ड नित्यानंद, लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, गौरीदास पंडित सैक्रिफाइज एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आता है, संन्यास लेने से पूर्व महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गौरीदास पंडित के पास गए अंबिका काल, अगर आप मायापुर जाएंगे तो वहां से पौने घंटे एक घंटे की दूरी में है अंबिका कालना, और वहीं पे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने स्वयं अपने समय में वहां पर गौरताय वगैरह की स्थापना की थी, क्योंकि अधिकांश मंदिरों में शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर राधा कृष्ण वगैरह के साक्ष महाप्रभु के वगैरह की स्थापना करते थे, लेकिन अंबिका कालना में उन्होंने गौरताय वगैरह की स्थापना की। उसका कारण यह है, गौरीदास पंडित जो हैं विरह के कारण वो वहां पर रुदन करते, और जब उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप कुछ समय के लिए यहां पर ही रहें, तो महाप्रभु ने उनके लिए एक अर्चे विग्रह क्या दिया, भेंट किया, जो कि नीम का बना हुआ था, और गौरीदास बोले महाप्रभु कि मेरा जो अर्चे विग्रह है मुझसे अभिन्न है, और चिंता मत करो, आपके घर में हम हमेशा सेवा स्वीकार करेंगे। तो गौरीदास पंडित गौरताय की सेवा करते थे, और बहुत ही उनका निकटतम संबंध था अर्चे विग्रह से, और नाना प्रकार के वो व्यंजन बनाते, मिष्ठान बनाते, और अर्चे विग्रह के समक्ष बैठकर शास्त्र की चर्चा करते, और जब वो वृद्ध भी हो गए तो गौरीदास पंडित वो फिर भी वो सेवा करते रहते, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा रहती कि वो गौरताय का श्रृंगार करें, मतलब सुंदर सुंदर आभूषणों से, सुंदर सुंदर वस्त्रों से, और गौर नित्यानंद यानी गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके हृदय को जानते हुए उन्होंने क्या किया, एक उनके साथ लीला किया। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा जब वो दर्शन खुला, और जैसे ही दर्शन खुला उन्होंने क्या देखा कि नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु के विग्रह में क्या है, ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषण ही आभूषण भरे हुए हैं। तो इस तरह से गौरदास पंडित की इच्छा पूरी की, गौरताय ने इच्छा पूरी की, और गौरदास पंडित जो है सोचने लगे कि ये आभूषण कहां से प्राप्त हो गए, ये कैसे लीला, कैसी लीला है, कहां से ये प्राप्त हो। तो एक बार की घटना बता रहे हैं, चैतन्य दास जो गौरीदास पंडित के प्रमुख शिष्य थे, वो गंगा जी के तट पर उन्हें बहुत ही भव्य संकीर्तन का आयोजन किया था, और गौरीदास के जो विग्रह थे, एक बार क्या हुआ कि वो ऑल्टर में थे, ऑल्टर छोड़कर वहां से भाग गए गौरताय। मान लीजिए आप दर्शन खोलते हैं, और दर्शन खोलते हैं आप देखते हैं कि वहां पर कृष्ण बलराम नहीं है, तो आप क्या हो, क्या हालत होगी आपकी। एक बार ऐसे ही हुआ था सीमंत द्वीप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी खेत में चले गए, है ना, तो जब खेत में चले गए तो पुजारी लोग घबरा गए, दर्शन जब खोला वहां जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है नहीं, तो फिर वहां महाराज को सपना आया, तो वो बताते हैं क्या सपना आया कि राधा माधव को तो इतने सारे व्यंजन लगाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं, और मुझे यहां तुम सरल भोजन खिलाते हो, मैं भी यहां पे रहो, मैं भी वहीं जाऊंगा राधा माधव के पास, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो फिर से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को लाया गया, और तब से वही भोग तैयार किया जाता है उसी तरह का जिस तरह से राधा माधव के लिए। तो भगवान आज भी लीला कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सब बहुत पुरानी कथा है, प्राचीन कथा है, ये तो कथाएं आज भी घटित हो रही हैं, वो भी हमारी संस्था में। तो इस प्रकार ये तो चैतन्य दास जो है उन्होंने संकीर्तन आयोजन किया था, और विग्रह जो है वो मंदिर छोड़कर चले गए। जब गौरीदास ने देखा कि गौरताय के भाग गए हैं, तो छड़ी लेके भागे, उनका जो भाव था वो सखे भाव था गौरताय के साथ, सखा का भाव था, तो छड़ी लेके भागे, वो कहाँ चले गए दोनों। और वहां पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने शिष्य के हृदय में गौरताय को देखा नृत्य करते हुए, चैतन्य दास के हृदय में वही गौरताय जो है नृत्य कर रहे हैं। तो वो देखकर वो अपने शिष्य से बड़े मतलब प्रभावित हुए, और शिष्य के ऊपर विशेष कृपा की, और उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम चैतन्य दास नहीं, आज से तुम्हारा नाम है हृदय चैतन्य। और इन्हीं हृदय चैतन्य के शिष्य बने कौन, कृष्णदास, जो कि बाद में फिर वृंदावन में श्यामानंद प्रभु के नाम से जाने गए। तो इस प्रकार और इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे बांके बिहारी मंदिर में भी आपने देखा होगा, उसकी भी ऐसी घटना है कोई। तो इस प्रकार की कई लीलाएं हैं। और भजन करते हुए धीर समीर कुंज में, जो वृंदावन में है, परिक्रमा मार्ग में आता है, धीर समीर कुंज है, वहां पे गौरीदास पंडित जो है नित्य लीला में प्रवेश किया, गोचारण लीला में, कृष्ण बलराम की गोचारण लीला में उन्होंने प्रवेश किया। तो ये था कुछ गौरीदास पंडित के बारे में। श्री गौरीदास पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की, हाँ, तो ये जो ग्रंथ है ये हमारे सामने प्रस्तुत किया है श्रीमान क्या है नित्य धाम प्रभु ब्रह्मचारी, इन्होंने हमारे सामने ये पुस्तक रखी है आप सबके लिए। आप में से कितने भक्तों के पास ये पुस्तक नहीं है, ये दोनों पुस्तक? आप में से कितने भक्तों के पास ये पुस्तक है और आप में से कितने भक्तों के पास ये पुस्तक नहीं है? तो जिनके पास नहीं है वो आज ही खरीद लीजिए इसके बाद। और उपदेशामृत आप में से कितने भक्तों के पास नहीं है, हाथ खड़ा करिए, तो आप भी ले लीजिए, ठीक है? आज सेवा करिए। आप अगर आज ग्रंथ ये खरीदेंगे तो आपको श्री रूप गोस्वामी की कृपा मिलेगी प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो इस प्रकार ये कुछ संक्षिप्त वर्णन था इन महान आचार्यों के बारे में। जैसे हमने बताया कि अगर इन महान आचार्यों के बारे में हम नहीं बताएंगे, इनका गुणगान नहीं करेंगे इनके तिरुभाव दिवस और आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में, तो हमें अपराध लगेगा, कर्जा है बहुत बड़ा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सावधानी ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई भी वैष्णव आचार्य का, किसी भी वैष्णव आचार्य का आविर्भाव होता है, तिरुभाव होता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनका गुणगान किया जाए। भले हमें ज़्यादा जानकारी ना हो, अगर हम तीन लाइन भी बोल सकें, चार लाइन भी बोल सकें, तो लेकिन बोले जरूर, उनका गुणगान जरूर करें, तब हमें क्या होगा, इन आचार्यों की कृपा मिलेगी। और ये भी भक्ति साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वैष्णवों का गुणगान करना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लीलाओं के बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो हम आज प्रयास करेंगे दो लीलाओं को सुनाने के लिए। एक है धेनुकासुर की लीला, धेनुकासुर का वध की लीला, और दूसरा है प्रलंबासुर का वध जो बलराम जी ने किया। तो ये दो लीलाओं को हम सुनाने का प्रयास करेंगे, और पता नहीं समय हमें कितना हमें अनुमति देता है, या आपके पास भी समय है या नहीं, प्रयास किया जाएगा। अच्छा, कल एक थोड़ा सा जो संशय था उसको हम लोग दूर करना चाहेंगे। जैसे हमने बताया था कि बलराम जी के आने से क्या हुआ, कि बलराम जी ने दो परिवारों को जोड़ दिया। कौन से परिवार को? नंद महाराज और वसुदेव जी के परिवार को जोड़ दिया, और इस कारण से उनका नाम संकर्षण पड़ा। तो हमने थोड़ा और पता लगाया इसके बारे में। श्रील जी गोस्वामी ने वर्णन किया है, श्रील प्रभुपाद ने इसको संक्षिप्त रूप में बताया है, और इसी को गोपाल चंपू में श्रील जी गोस्वामी बताते हैं कि वृष्णि वंश में ये वर्णन आता है। वृष्णि वंश में एक महान राजा हुए थे जो मथुरा में रहते थे, जिनका नाम था देवमीर। और देवमीर जो है ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी दो पत्नियां थी, पहली जो पत्नी थी जिनसे उनका विवाह हुआ वो क्षत्रिय परिवार की थी, और जो दूसरी पत्नी थी वो वैश्य परिवार की थी। उस समय प्रथा ये थी कि जो संतान है, जो उत्पन्न होगा, उसको उसका उसकी जो जात की पहचान है वो मां के अनुसार पहचानी जाएगी। तो ये प्रथा थी उस समय, इस प्रकार वर्णन मिलता है गोपाल चंद्र में। और साथ में ये भी बताया गया है कि इन दो पत्नियों ने एक एक लड़का जन्म दिया, और एक क्षत्रिय पत्नी से जो जन्म हुआ उनका नाम पड़ा सूरसेन, और जो पत्नी वैश्य परिवार से थी उनसे जन्म हुआ नंद महाराज का, और सूरसेन से जन्म लिया किसने? वसुदेव जी ने। और जो जो मतलब दूसरे जो पुत्र थे परजन्य उनका नाम था परजन्य, और परजन्य से जन्म लिए नंद महाराज। तो सूरसेन और परजन्य ये दोनों क्या थे? भाई भाई थे। तो उनके जो लड़के हैं सुपुत्र हैं स्वाभाविक है कि वो भी भाई भाई होंगे। तो इस प्रकार इन दोनों परिवारों को जोड़ा, किसने जोड़ा? बलराम जी ने जोड़ा। कैसे जोड़ा? योग माया ने क्या किया, स्थानांतरित कर दिया, माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। और माता देवकी और माता रोहिणी क्या है? ये वसुदेव जी की पत्नियां। तो इस प्रकार स्थानांतरित करने पर ये फिर रोहिणी नंदन कहलाए। बलराम जी के कई नाम हैं, इसमें अगर आप पढ़ेंगे गर्गाचार्य गर्ग संहिता में एक खंड ही आता है, इसको कहते हैं बलराम खंड, यानी कि बलराम जी के बारे में बहुत वर्णन किया वहां पर। तो बलराम सहस्र नाम है, जैसे विष्णु सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम है, वहां पर बलराम जी के हजार नाम बताए गए हैं। तो उसमें कई नाम है, उसमें एक नाम ये भी है प्रलंबारी, प्रलंबारी यानी प्रलंबासुर को मारने वाले। तो इस प्रकार कई नाम दिए गए। वृंदावन में कई असुरों और राक्षसों का वध किया कृष्ण बलराम ने। ये जो कृष्ण बलराम आपके समक्ष खड़े हैं, इन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा। एक बार की घटना है, भुवनेश्वर की घटना। अब एक घटना से कई घटनाएं याद आ जाती हैं। तो वहां पे एक बार श्रील गौर गोविंद महाराज आए, आप जानते हैं कि वहां पर भी प्रभुपाद की इच्छा थी, तो कृष्ण बलराम की स्थापना हुई वहां पर। और एक बार जब महाराज आए तो कथा के दौरान जब कथा कर रहे थे तो अचानक उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कुछ देखा और वो बोले कि आप क्या सोचते हैं कि कृष्ण बलराम सो रहे हैं, दर्शन बंद हो गया है? वो तो देखो ये भी अभी भी यहां पे भी खेल रहे हैं, कृष्ण बलराम खेल रहे हैं यहां पर हमारे मंदिर के आंगन में खेल रहे हैं कृष्ण बलराम। और फिर एक दिन पुजारी को डांटा महाराज ने, उन्होंने कहा कि आज तुमने क्या खिलाया कृष्ण बलराम को, वो शिकायत कर रहे हैं मुझसे, उनका गला बंद हो गया है, ठंड का मौसम है और तुमने केला खिला दिया उनको, और वो शिकायत कर रहे हैं कि उनका गला भर गया है। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम भी अर्च्य विग्रह के रूप में जब आते हैं तो वो भी ये भी लीलाएं करते हैं, ये नहीं कि कृष्ण साक्षात जब होते हैं वही लीला करते हैं, अर्च्य विग्रह के रूप में भी होते हैं तब भी लीला करते हैं, पुजारियों के साथ कई घटनाएं होती हैं। तो ये धेनुकासुर का वध के बारे में बताया गया है, ये प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में अध्याय 15 दशम स्कंद। तो यहां पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि वृंदावन में जब रह रहे थे राम तथा कृष्ण, प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बताया एक जगह पर एक कन्वर्सेशन में, हम इन राम कृष्ण को मानते हैं उस राम कृष्ण को नहीं। आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूं, हम इन राम कृष्ण को मानते हैं उस राम कृष्ण को नहीं। फिर प्रभुपाद ने ये भी कहते हैं कि ये जो राम कृष्ण हैं ये भगवान हैं। तो इस प्रकार ये कई लीलाएं होती हैं, भगवान की कुमार अवस्था की लीलाएं होती हैं, एक साल से पांच साल की अवस्था में जो लीलाएं होती हैं उस लीलाओं को कुमार लीला कहा जाता है। फिर जो लीला होती है उस लीला को कहा जाता है पौगंड लीला, जो 6 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक होती है, और उसके बाद 11 साल की उम्र से लेकर लगभग 16 साल की उम्र तक जो होती है उस लीला को कहते हैं किशोर लीला। गोलोक धाम में श्री कृष्ण किशोर अवस्था में रहते हैं, उससे आगे उनकी उम्र बढ़ती नहीं, वहां पर उनकी उम्र 15 साल 9 महीने 7.5 दिन ही रहती है, उससे आगे उम्र बढ़ती नहीं होती। बलराम जी का उम्र का मुझे ठीक तरह से पता नहीं है, अगर किसी को पता हो तो बताएं। हाँ निश्चित रूप से कृष्ण से बड़े हैं बलराम। तो इस प्रकार तो इन वर्षों में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, और जब वो लगभग 6 साल की उम्र पहुंच गए, 5 साल की उम्र से आगे बढ़ गए, और वो सारे ग्वाले सारे सखा जो इस उम्र तक पहुंच गए थे उन सबको अब आज्ञा मिली, उन सबको क्या मिली आज्ञा, माता यशोदा से, नंद महाराज से और उनके अपने अपने माताओं से पिताओं से कि अब वो क्या करने जाएं, गोचारण लीला के लिए जाएं, गोचारण लीला के लिए जाएं। तो गोचारण लीला के लिए सबसे पहली बार जब श्री कृष्ण गए, बलराम जी गए, उस दिन को, उस तिथि को कहा जाता है गोपाष्टमी, कार्तिक मास में ये तिथि आती है। कार्तिक मास बड़ा महत्वपूर्ण है, कई सारी लीलाएं घटित हुई हैं कार्तिक मास गोपाष्टमी में। और जिस दिन श्रीमती राधारानी को पता चला कि कृष्ण गोचार लीला के लिए सबसे पहली बार जा रहे हैं कृष्ण बलराम और अपने सखाओं के साथ, तो राधारानी बड़ी तेजी से भागी यह दृश्य देखने के लिए। और क्योंकि जब वो तेजी से भाग रही थी, अभी देखिए आपको राधारानी के चरण दर्शन हो रहे हैं, कब होते हैं आपको चरण दर्शन बताइए। लेकिन वास्तव में चरण दर्शन सबसे पहले राधारानी कब दिए, गोपाष्टमी के दिन। गोपाष्टमी के दिन राधारानी बहुत तेजी से भागी, तो उन्हें स्वाभाविक है थोड़ा कपड़ा उनको ऊपर करना पड़ा, जब तेजी से भाग रही है तो लहंगे को जैसे ही तो उन्होंने ऊपर किया तो क्या हुआ, उनके चरण दर्शन प्राप्त। तो ये गोपाष्टमी के दिन एक घटना हुई। और ये बताया गया पद्म पुराण में, यहां तात्पर्य में दिया गया है, विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गवों की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। इससे पहले वो बछड़े चराते थे, इससे पहले वो गोपाल नहीं थे, इससे पहले वत्सपाल थे, और अब क्या हो गए, गोपाल हो गए। तो गोचारण लीला करने के लिए गए थे। और माता यशोदा ने बहुत सारी व्यवस्था की कि ये धूप में जाएगा, ब्रज में तो आप जानते हैं कि हर जगह कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, और नीचे से जो चुभते हैं, तो वैसे ही नृत्य हम लोग करते हैं, है ना। ब्रजमंडल परिक्रमा जब जाते हैं तो बहुत कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, तो ये जाएंगे तो इनके पाँव में कांटे चुभेंगे। तो माता यशोदा क्या करती हैं, वो जूता ला कर देते हैं। तो जब जूता ला कर देते, वृंदावन में वास्तव में कृष्ण बलराम कभी जूता नहीं पहनते, वृंदावन से बाहर पहनते। और जब जूता पहनाने लगी माता यशोदा तो कृष्ण ने मना कर दिया, छतरी के लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कहा ये जो गाय हैं आप मुझे भेज रही हैं गाय का लालन पालन करने के लिए, गोचारण के लिए आप भेज रही, ठीक है, ये अच्छा दिखता है कि मैं इनकी सेवा के लिए जा रहा हूं, और स्वयं तो मैं छतरी लेके पकड़ू और चप्पल जूते पहनूं और ये बिना जूते और छतरी के हैं, ये कौन सी सेवा है, है ना। मान लीजिए आप महाराज की सेवा में लगे हैं और खुद अपने ऊपर आपने छतरी लगा ली है, रथ यात्रा का समय है, खुद आपने जूते चप्पल पहने हैं और महाराज जी के पास चप्पल नहीं है और उनके छतरी नहीं है उनके पास, तो इसको इसको सेवक कहेंगे, है ना, ये तो भोगी भोगी। तो इस तरह तो माता यशोदा ने कहा नहीं नहीं, और माता यशोदा से कहा कृष्ण नहीं नहीं ठीक नहीं है, अगर मुझे गोपाल की सेवा मिली है तो मुझे ठीक तरह से करना चाहिए, ये जूते चप्पल ठीक नहीं है, छतरी वतरी नहीं लूंगा मैं, ऐसे ही जाऊँ। तो फिर कृष्ण बलराम सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश किए, वृंदावन में प्रवेश किए। आप जानते हैं उसमें कहाँ रहते थे, इस अवस्था में, इस पौगंड अवस्था में कहाँ रहते थे कृष्ण बलराम, पहले 3 साल कहाँ पे रहे थे श्री कृष्ण, गोकुल में लगभग 3.5 साल। दामोदर लीला वो जो यमला अर्जुन वृक्ष का जो उद्धार किया वो अंत लीला है गोकुल की। उसके बाद कृष्ण बलराम और सभी समस्त गोकुल के जो ब्रजवासी थे वो सब वहां से निकल चले। और जो आप जानते छठी करा वहां पर नंद महाराज आते थे, जो कई जो ग्वाले थे और कई ऐसे जो वहां पर ग्वाले थे जो सहायता करते थे या गोकुल में भी थे, वो सब कर चुकाने के लिए आते थे वहां पर छठी करा में। तो वहां पर 1.5 साल रहे वो, और उसके बाद फिर वो नंद गांव में प्रवेश किए, नंद पर्वत के ऊपर। नंद पर्वत के ऊपर उन्होंने क्यों अपना स्थान बनाया, क्योंकि उनको ये बताया गया था, उनको सुझाव दिया गया था ऋषि मुनियों के द्वारा कि आप ऐसा करें ऊंचे स्थान में अपना निवास स्थान बनाएं, क्योंकि कंस जो है अपने असुरों को राक्षसों को भेजता रहता है इनका वध करने के लिए, तो अच्छा होगा कि आप ऊंचे स्थान में रहें। वहां पे कहां पर, नंद पर्वत के ऊपर, नंदीश्वर। तो वहां पर शिवजी जो हैं पर्वत के रूप में वहां पर रह रहे, तो शिवजी महादेव के ऊपर विशेष कृपा हुई कि कृष्ण बलराम के चरण उनके सर पर लग रहे थे। तो नंद महाराज और सभी ब्रजवासी जो थे गोकुल से वहां प्रवेश किए, तो ये लीलाएं वहां से हुई है। तो नंदगांव से वृंदावन में प्रवेश करते थे प्रत्येक दिन। वरा पीड़म नटवर बपहु करणेयो करणिकारम बिब्रद वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणुरधर सुदया पुरेन गोप वृंदे। फिर क्या है, वृंदावर्ण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो ये वृंदावन में प्रवेश करते थे कृष्ण बलराम, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया। तो ये गोपियों के द्वारा बोला जा रहा कि वृंदावन में इस प्रकार प्रवेश करते हैं और गोचारण लीला करते हैं, वेणुवादन करते हैं, है ना। तो ये सब यहां पर वर्णन आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होता है, ये यहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ये दशम स्कंद इतना मधुर है, इसकी तुलना भगवान के मुख से की गई है, मुखमंडल से की गई है। भागवत का जो प्रथम स्कंद है, ये जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में बताया है कि भगवान के जो एक एक अंग है, भागवत का जो एक एक स्कंद है, वो भगवान श्री कृष्ण के एक एक अंग से उसकी तुलना की है। भगवान के जो चरण हैं वो भागवत का प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद है, और भगवान की जो जांघ है वो भागवत का तृतीय स्कंद और चौथा स्कंद है। भगवान का जो उदर है वो भागवत का पंचम स्कंद है। इसलिए वहां पर आप वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में देखते हैं, है ना। आपने देखा हा? तो वहां पर दामोदर अष्टकम है, ये आता है, क्या आता है, त्वदीयो दरायत विश्वस्य धामने, है ना। आपके उदर में समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास कर रहे हैं उदर में। तो इसलिए भागवत का जो पंचम स्कंध है उसमें आप विशेष रूप से वर्णन मिलता है, हाँ, वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में। भागवत का जो छठा स्कंद है, छठा स्कंद भगवान का हृदय है, भगवान का हृदय। छठे स्कंद में क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जहाँ पे अजामिल की कथा है, नाम की महिमा का वर्णन किया गया। भागवत का जो सप्तम स्कंद है और आठवां स्कंद है, ये भगवान की भुजाएं हैं, और भगवान का जो कंठ है वो भागवत का नौवां स्कंद है, और भगवान का मुखमंडल जो है भागवत का दशम स्कंद है, और भगवान का जो मस्तक है उसकी तुलना भागवत से, भागवत के एकादश स्कंद की तुलना भागवत के भगवान कृष्ण के मस्तक से की गई है, फोरहेड से की गई है। और भागवत का जो द्वादश स्कंद है उसकी तुलना भगवान कृष्ण के मुकुट से की गई है, मुकुट से की गई है। तो ये है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम यानी कि श्री कृष्ण से अभिन्न है, कहने का तात्पर्य है ना। भागवत का जब स्पर्श करते हैं तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए ये जो शास्त्र है ये भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। कृष्ण स्वधाम उपगते ज्ञान धर्मादि भी सहा कलो नष्ट दृशा में श पुराणा को बुधनोदिता। यानी कि परम भगवान श्री कृष्ण धाम जब चले गए, ज्ञान भी चला गया, धर्म भी चला गया, सब चले गए, तो पीछे क्या छोड़ गए, ये पुराण भागवत महापुराण छोड़ गए, जो सूर्य के समान क्या करता है, पूरे जगत का अंधकार, पूरे जगत की अज्ञानता को दूर करता है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसलिए ये दशम स्कंद का अध्ययन करना बहुत ही लाभकारी है जब हम लोग इसको सही स्रोत से सुनते हैं। सीधे तो दशम स्कंद में नहीं पहुंचना चाहिए, हमारे आचार्यों की तरह सुझाव है कि सबसे पहले हमें भागवत का प्रथम स्कंद पढ़ना चाहिए। रूप गोस्वामी भी यही बता रहे हैं भक्ति रसाम सुंदु में, जब अर्चय वगैरह का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, और भागवत का प्रथम स्कंद, भगवान का भागवत का द्वितीय स्कंद, ये भगवान के चरण हैं। तो चरणों में सबसे पहले हम रति जागृत करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद जी की अपार कृपा है कि प्रभुपाद ने क्या किया, 1970 में ही दशम स्कंद का सार रूप हमें दे दिया। परम भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, परम भगवान श्री कृष्ण, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो कि दशम स्कंद का ही वास्तव में सार है, हमें दे दिया। तो यहां पर बताया जा रहा है, भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि दौड़ाई जो भौरों पशुओं तथा पक्षियों की मनोहर गुंजार से गूंज रही थी। इसकी शोभा महात्माओं के मनों के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से तथा 100 पंखड़ियों वाले कमलों की सुगंधि ले जाने वाली मंद वायु से भी बढ़कर थी। ये सब देखकर भगवान कृष्ण ने इस पवित्र वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया। तो असली भोगी तो भगवान कृष्ण हैं, वो ही आनंद लेते हैं वास्तव में। और वृंदावन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप देखते हैं, वो इन्हीं की प्रसन्नता के लिए, सब इनकी सेवा में लगे हुए हैं। आदि पुरुष ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों के भार से युक्त होकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो वहां पर कई ऐसे वृक्ष देखेंगे आप, जैसे निधि वन में और सेवा कुंज में जाते हैं तो वहां के जो झाड़ियां देखते हैं, वहां के कुंजों में जाते हैं, वहां के वृक्षों को देखें, उनकी डालियों को देखें, उनकी शाखाओं को देखेंगे, सब के सब झुकी हुई हैं, है कि नहीं। आज भी आप ये दृश्य देख सकते हैं, वृंदावन में ऐसे कई वृक्ष हैं। तब मंदहास करते हुए वे अपने बड़े भाई से बोले, तो श्री कृष्ण बलराम जी से बोल रहे हैं, हे देव सुरेश, देखे ना ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य है, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सिर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा है। तो कृष्ण बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। अब कृष्ण स्वयं तो नहीं कहेंगे ना ये बात कि देखो, वो भी बलराम जी के समक्ष उनके अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, तो ये ना थोड़ा बोलेंगे कि ये देखो सारे वृक्ष जो हैं मेरे चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। कृष्ण देखिए शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। तो इन लीलाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये लीलाएं केवल कथाएं नहीं है, इसमें बहुत ही गहरा सिद्धांत भी छुपा हुआ है। तो कृष्ण बलराम जी को बोल रहे हैं कि आपके चरणों को देखकर ये सब शाखाएं, ये जो वृक्ष हैं, ये फूल फल अर्पित कर रहे हैं आपके चरणों में। हे आदि पुरुष, ये भोरे अवश्य ही मान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है। यद्यपि आपने जंगल में अपना वेश बदल रखा है, किंतु हे अनघ, अनघ का मतलब है जो पाप से रहित होता है उसको अनघ कहते हैं, और जो पाप युक्त होता है उसको अघ कहते हैं, है ना। तो अगासुर का मतलब यही है, अगासुर ये लोग का नाम ही बड़ा अजीब सा होता था, अगासुर पापासुर। तो बलराम जी अनघ है, वह अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये आराध्य, ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। साधारणतया क्या होता है कि मोर नाचते हैं जब बारिश का मौसम होता है। अब वृंदावन में जाएंगे बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु के समय विशेष रूप से, अभी अगर आप देखेंगे तो कई मोर आपको नृत्य करते हुए दिखाई देंगे, सारे पंखों को फैलाते हुए, इतना सुंदर दृश्य होता है। वृंदावन में अगर पीछे रमन देती की तरफ जाएं और वहां अभी भी आप मोर का दर्शन कर सकते हैं, मोरों का दर्शन कर सकते हैं और पंखों को फैलाते हुए नृत्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बिना वर्षा के ही कृष्ण बलराम के समक्ष जो है ये नृत्य कर रहे हैं। हिरणियों अपनी स्नेहिल चितवनों ने से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं, ये कोकिलाएं आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही हैं, जंगल के सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका बर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत के अनुरूप है। कहने का अर्थ यह है कि वृंदावन में प्रत्येक जीव कृष्ण बलराम की स्तुति में लगा हुआ है, सब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, सब कृष्ण की सेवा में लगे हैं। तो मंदिर भी यही स्थान है, यहां पर भी कृष्ण बलराम विराजमान है। तो इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना, यानी कृष्ण भावना कि अगर आप चरम सीमा देखना चाहते हैं तो वो है श्रीधाम वृंदावन में, है ना, जहां पर ये समस्त जो नित्य परिकर हैं, पार्षद हैं, भगवान के वृक्ष के रूप में हो, गाय के रूप में हो, मोर के रूप में हो, हिरण के रूप में हो, है ना, किसी भी देह के स्वरूप में हो, लेकिन ये सब जो है क्या कर रहे हैं, सब कृष्ण की सेवा करना चाह रहे हैं, सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। अब ये धरती परम धन्य हो गई, क्योंकि आपने पैरों से इस घास तथा झाड़ियों का, अपने नाखूनों से इसके वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है, और आपने इसकी नदियों, पर्वतों, पक्षियों तथा पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। इनसे भी बढ़कर आपने अपनी तरुणी गोपियों को अपनी दोनों भुजाओं से भरकर उनका आलिंगन किया है, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी लालायित रहती हैं। तो लक्ष्मी जी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है, वो अभी भी वृंदावन में प्रवेश नहीं प्राप्त हुआ उनको, बेल वन में अभी भी तपस्या कर रही, बेल वन में तपस्या कर रहे, वहां पर खिचड़ी का भोग लगाया था उनको। बेल वन में जाएंगे वहां पर लक्ष्मी जी का विग्रह है। आप जब केशी घाट में जाते हैं तो केशी घाट के उस पार जाएंगे तो वहां पर बेल वन है, तो बेल वन में आप जाएंगे तो वहां पर लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो घोर तपस्या में लगी हुई है। लक्ष्मी जी को प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो वैकुंठ का भाव है उनका, और वो वैकुंठ के भाव को वो बरकरार रखते हुए वृंदावन में प्रवेश करना चाहते, तो इसलिए उनको वहां वृंदावन में प्रवेश मिलता नहीं है। तो ये जो लक्ष्मी जी को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उन गोपियों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार वृंदावन के रम्य जंगल तथा वृंदावन के निवासियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों सहित गौओं तथा अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर आनंद लिया, तो ये सब जो है वृंदावन, गोवर्धन, इन सभी इलाकों में कृष्ण बलराम जो है गौओं को चराते थे। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। प्रातःकाल श्री कृष्ण जो है 6 बजे से पहले नहीं उठते हैं। आप तो 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं हम सब, लेकिन उस समय कृष्ण बलराम सो रहे होते हैं। कृष्ण बलराम लेकिन हमारे लिए जाग जाते हैं यहाँ, लेकिन लीलाओं में कृष्ण बलराम जो है वो सो रहे होते हैं बड़े चैन की नींद, कि अर्धरात्रि में प्रवेश किया होता है श्री कृष्ण ने पीछे के रास्ते से। वो गए होते हैं योगपीठ में वृंदावन में, और लगभग प्रातःकाल के समय पहुंचते हैं और पीछे के रास्ते से आकर सो जाते हैं, और माता यशोदा आकर देखती हैं तो उनको लगता है बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। और जब कृष्ण उठते हैं तो माता यशोदा को ये लगता है कि बहुत थका हुआ है, शायद थका हुआ क्यों लग रहा है, बहुत थका हुआ, मेरे ख्याल से इसलिए शायद पूरे दिन गोचारण करता है, जंगलों में जाता है, इस वजह से शायद थका हुआ है, थका हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उनको क्या पता कि वो कहाँ है तो इस प्रकार माता यशोदा प्रातःकाल वो क्या करती हैं, जब कृष्ण बलराम ये सब उठ जाते हैं, माता रोहिणी और अन्य जो वृद्ध गोपियाँ हैं और अन्य सखा लोग, ये सब वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, और राधा रानी भी बरसाना से आती हैं, और नाना प्रकार का व्यंजन मनाया जाता है इनके लिए, कृष्ण बलराम के लिए, है ना। बज भकत बासल श्री गौर हरि, भक्तों ठाकुर ने गाया कि नहीं, है ना, कितने सारे व्यंजनों का वर्णन कर रहे हैं भक्तों ठाकुर, है ना। भक्तों ठाकुर के सामने ये सब व्यंजन नहीं है, लेकिन भक्तों ठाकुर की लीला का स्मरण करते हुए, इस लीला का स्मरण करते हुए इन्होंने भजन लिखा, है ना। तो कितने सारे वो अगर पढ़ेंगे भजन, आप पढ़ सकते हैं, इसमें है वैष्णव आचार्यों की गीत इसमें दिया हुआ है। तो ये उस समय की लीला है, प्रातःकाल में जब कृष्ण बलराम के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, माता यशोदा, माता रोहिणी बनाते हैं, श्रीमती राधारानी बनाते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। और इन सब व्यंजनों को ग्रहण करने के बाद बाकी और जो परिवार के सदस्य हैं और जो परिकर हैं वो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर कृष्ण बलराम वो गोचारण लीला के चले जाते हैं, समझ लीजिए लगभग 8:30-9 बजे के बीच में। तो इस समय वो चले जाते, फिर 4 बजे तक वापस नहीं लौटते हैं लगभग, जिसको गोधुली की बेला कहते हैं। गोधुली, गोधुली का मतलब है कि जब कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ आ रहे होते हैं, गवों के साथ आ रहे होते हैं, तो धूल उड़ती है बहुत, और धूल उड़ती है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब दूर से माता यशोदा देखती हैं वो सारा धूल श्री कृष्ण के ऊपर लगा हुआ है, है ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं श्री कृष्ण उस समय। माता यशोदा यहाँ तक दीवार के ऊपर चढ़कर देखते हैं वो देखते हैं दूर से, जब देखते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं, मोर पंख नजर आता है उनका, है ना, और उनका सुंदर स्वरूप नजर आता है, तो माता यशोदा और ज्यादा जो है वो क्या हो जाती है, हर्षित हो जाते हैं, भावविभोर हो जाती है। तो इस प्रकार गोचारण की लीलाएं करते हैं। यहां पर लिखा है, इस प्रकार वृंदावन के रम्य जंगल तथा वृंदावन के निवासियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलेटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों से गवों तथा अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया। कभी कभी वृंदावन में भोरे आनंद में इतने मग्न होते कि वे अपनी आंखें बंद करने करके गाने लगते थे। भौरे बहुत अच्छा गाते हैं, भौरों को गाते देखा है, इसलिए भागवत में दशम स्कंद में एक प्रसंग है, अध्याय, उस प्रसंग का नाम क्या है, भ्रमर गीत, भवरे के द्वारा गाया गया गीत। तो भवरे जब गुनगुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना, सुना आपने भवरों को गुनगुनाते देखा आपने, जब वो अलग अलग फूलों के ऊपर बैठने जाते हैं, या अगर आप देखेंगे सुबह के वक्त भी जब प्रभुपाद जी गुरु पूजा होती है वहां पर ईस्टर कैलाश में, तो वहां पर कई ऐसे भवरे तो नहीं कह सकते उसको, मधुमक्खी होती है ऐसे वो आकर फूल में बैठ जाते हैं ऐसे, इसी तरह से भवरे बैठते हैं और नाना प्रकार की आवाजें करते हैं, घूम करके घूमते। तो इस प्रकार अपने ही आवाज से वो क्या करते थे, गाने लगते हैं। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने राग में उनके गुनगुनाने की नकल उतारते थे। तो क्या करते थे कृष्ण और बलदेव, क्या करते थे, इन भंवरों की आवाज निकालते, भंवरों की आवाज सुनते तो कृष्ण बलराम भी क्या करते, और फिर साथ में क्या होता, उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते। अब क्या करते कि उनकी लीलाएं, यानी कि उनका जो जिस तरह से वो गायन करते तो जो सखा लोग होते वो भी इस तरह से नकल करते उनके। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं निवृत्त तर शेर उपगीय माना, है ना, जैसे हम लोग श्लोकों का उच्चारण करते हैं, वक्ता जब उच्चारण करता है उसके बाद क्या करते हैं श्रोता, क्या करते हैं पीछे गुनगुनाते हैं, तो उस गुनगुनाने को कहते हैं उपगीय माना। तो भंवरे जब गुनगुनाते थे उसके बाद कृष्ण बलराम उसी आवाज में गुनगुनाते थे, तो पीछे जो उनके जो सखा थे मित्र वो भी उसी प्रकार गायन करते, वो भी उसी तरह से गुनगुनाते। कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते जिस पर उनके ग्वाल मित्र हंस पड़ते। तो मोरों को देखकर श्री कृष्ण और बलराम जी वो भी इन मोरों की नकल करते और इस प्रकार नाच। आपने एक चित्र देखा होगा हमारे दिल्ली मंदिर ईश्वर कैलाश मंदिर में, जो परिक्रमा मार्ग में कई पेंटिंग्स हैं, वहां पर आपने देखा होगा एक कृष्ण ने जो है मोर का रूप धारण किया हुआ है, और श्रीमती राधारानी ने भी मोर का रूप धारण किया हुआ है, लेकिन वो वृंदावन में नहीं, वो बरसाना में है, मोर कुटीर जहां पर है, है ना, तो मोर बन के वहां नृत्य किया। तो ये इस प्रकार का नृत्य करते कृष्ण, नकल करते, मोर के नृत्य की नकल उतारते जिस पर उनके सारे मित्र हंस पड़ते और सब मित्रों को हंसी आती, है ना। तो लीला में प्रवेश करने का मतलब क्या है, हमें लगता है कि ये क्या गोचारण लीला कह रहे हैं, गोचारण लीला के लिए जाते हैं कृष्ण, ऐसा तो लगता नहीं कि वास्तव में कोई गोचारण कर रहे हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जो गाय हैं गुए हैं वो सब बहुत दूर निकल जाते हैं, क्योंकि इनका समय तो गोचारण में नहीं बीतता, इनका समय में बीतता खेलकूद में मित्रों के साथ, ये क्रीड़ा करते रहते। कृष्ण के लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं वहां पर, इसलिए तो भगवान है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, तो वहां पर कृष्ण जो है आनंद ही ले रहे हैं, और कृष्ण की जो सेवा में लगे हैं वो भी आनंद लेते हैं। आनंदमयो भ्यासात, ये जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वो आनंद जो हमें धाम में मिलता है उस आनंद की तलाश हम लोग यहां पर दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, इस नरक में, है कि नहीं, दिल्ली में हम वो आनंद की तलाश कर रहे हैं। अगर मित्रता ही करनी है तो कृष्ण से करें, बलराम जी से करें, असली मित्रता है। यहां के मित्र तो सारे के सारे स्वार्थी होते हैं, है ना, इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं होता है, है ना। और असली अगर कोई मित्र है तो कौन है, सुहृदं सर्वभूतानां, कृष्ण कह रहे हैं, मैं हूं असली सबका मित्र, सुहृद। कृष्ण ने नहीं कहा कि मैं बंधु हूं, कृष्ण ये नहीं कहा कि मैं मित्र हूं, केवल ही नहीं कहा, कृष्ण कहा मैं सुहृद हूं। सुहृद यानी कि बहुत जो घनिष्ठ मित्र होता है उसको सुहृद कहा जाता है, और कृष्ण बलराम से अधिक कोई घनिष्ठ मित्र हो ही नहीं सकता है। वो हमारे वास्तव में मित्र हैं, और वो सबके मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? आपके साथ भी हैं, आपके हृदय में भी बैठे। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, है ना, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। तो हर जीव के हृदय में भी कृष्ण वास कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। कृष्ण तो कभी छोड़ते ही नहीं किसी जीव को, भले ही जीव छोड़ दे कृष्ण को, भूल जाए, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूलते हैं। तो कृष्ण इंतजार कर रहे हैं हम सब के लिए कि कब हम लोग भी वहां जाकर उनकी लीला में प्रवेश करके उनकी सेवा में लगेंगे। कभी कभी वे बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में झुंड से दूर गए हुए पशुओं का नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते, जिससे गौएं तथा ग्वाल बाल मुग्ध हो जाते। तो क्या होता है कि जब गौएं दूर चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बादलों जैसे गर्जन करते हुए। कौन? कृष्ण बलराम। क्योंकि अब ये लोग खेल रहे हैं, अब खेल रहे हैं तो गौएं थोड़ा मार रहे हैं, वो दूर चली जाती, अब उनको बुलाने के लिए वो गर्जन करते हैं, बादलों की तरह गर्जन करते हैं, और इस तरह से उन सब गौओं को बुलाते। कभी कभी वह चकोर, क्रोच, चकाव, भारद्वाज जैसे पक्षियों की नकल करके चिल्लाते, और कभी छोटे पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ बाघों तथा शेरों के बनावटी भय से भागने लगते। तो क्या होता कि जैसे जब देखते कि जंगल में इस प्रकार की आवाज आती, शेर की आवाज आती, बाघों की आवाज आती, तो वो भागने की आवाज, भय से भागने भागते, और साथ साथ में क्या उनके सखा लोग उनके पीछे पीछे भागते। जब उनके बड़े भाई खेलने से थक कर अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख कर लेट जाते, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते। तो भगवान कृष्ण क्या करते, बलराम के पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते। तो कृष्ण क्या करते हैं, सेवा करते बलराम जी। हाँ, चित्र वो देखिए पीछे लगा है, बिल्कुल सामने, कृष्णा सर्विंग बलराम। अभी चर्चा हुई, लीला स्फूर्ति हुई केशव मुरारी प्रभु को, और उन्हें दर्शन करा लिए। भक्तों में अंतर होता है ना, एक कथावाचक है और एक को लीला स्फूर्ति हो रही। तो ये प्रभुपाद ने कहा, दीज पेंटिंग्स आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी कि जब आप इस चित्र का दर्शन कर रहे हैं तो साक्षात गोलोक वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। ये चित्र जो है वहां से उन लीलाओं से अभिन्न है, तो हम भी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने शक्ति दी अपने शिष्यों को। कभी कभी जब ग्वाल बाल नाचते गाते इधर उधर घूमते और खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ते, तो पास ही हाथ में हाथ डाले खड़े होकर कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के कार्यकलापों की प्रशंसा करते और हंसते। कभी कभी भगवान कृष्ण झगड़ने से थक जाते और वृक्ष की जड़ के पास कोमल टहनियों तथा कलियों से बने हुए बिस्तर पर अपने किसी ग्वाल बाल मित्र की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। तब कुछ ग्वाल बाल जो महान आत्माएं थी उनके चरण कमल दबाते, और अन्य ग्वाल बाल निष्पाप होने के कारण बड़ी ही कुशलतापूर्वक भगवान पर पंखा झलते। पहले भी वर्णन आया कि जो वृक्ष थे उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कृष्ण बलराम की सेवा का। तो प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में लिखा है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं उनको ब्रह्म ज्योति में तो लीन होने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन वृक्ष तो बन जाते हैं निश्चित रूप से। ऐसा कौन बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में जब महाप्रभु ने पूछा रामन राय से कि निर्विशेषवादियों का क्या होगा, जो ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं उनका क्या होगा, तो रामन राय ने उत्तर दिया कि वो पेड़ बनते हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी निष्क्रिय रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, कोई सेवा नहीं करना चाहते हैं, ना माया की सेवा करना चाहते हैं, ना कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उनको मायावादी भी कहा जाता है। ना वो माया की सेवा करते हैं, ना माया की सेवा करना चाहते हैं, हालांकि वो माया में होते हैं इसलिए वो मायावादी हैं, और ना वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं इसलिए उनको पेड़ बना दिया जाता है, खड़े रहो एक जगह पर। लेकिन वृंदावन धाम में इन वृक्षों को उस अवसर प्राप्त हुआ कृष्ण बलराम की सेवा का। तब कुछ ग्वाल बाल जो महान आत्माएं थी उनको अवसर प्राप्त हुआ सेवा का। हे राजन, अन्य बालक समयोचित मनोहर गीत गाते और उसके हृदय भगवत प्रेम से द्रवित हो उठते। इस तरह भगवान जिनके कोमल चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर ग्वाल बाल की तरह कार्य करते। अन्य ग्राम वासियों के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए कभी कभी ऐसा कर्तव्य दिखलाते जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। मतलब यहां पर प्रभुपाद दादा बता रहे हैं कृष्णा बुक में कि यहां पर जैसे लिखा है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वो ऐसा कर्तव्य करते जो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा कई लोग हैं समाज में जो अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहे हैं, भगवान घोषित कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भगवत्ता का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। भगवान ने किया तो भगवान अपनी लीलाओं के बीच बीच में कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाते, हालांकि उस ऐश्वर्य का प्रभाव इन सखाओं के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो दिखाते। वो इसलिए दिखाते कि हम लोग समझ सकें कि ये साधारण सखा नहीं है, ये स्वयं भगवान है जो सखा के रूप में लीला कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा, हे राम, हे महाभाव, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता, यहां से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पंक्तियों से परिपूर्ण है। तो ये किसने बोला? उनके अत्यंत जो घनिष्ठ मित्र थे, श्रीराम सखा, सुबल सखा, स्तो कृष्ण, ये सखा जो उनके कृष्ण बलराम के थे, उन्होंने कहा कि पास में क्या है कि जो है ताल वन, जिसको कहते हैं, उस वन का नाम है ताल वन। जब ताल वन, उस ताल वन में वृक्षों से अनेकानेक फल गिरते रहते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए, किंतु इन सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनु द्वारा की जा रही थी। यानी कि इस असुर ने इतना आतंक मचाया हुआ था, धेनु का असुर ने, कि वहां पर नाम तो था उसका धेनु का असुर, लेकिन वास्तव में वो गधे के रूप में था। धेनु का मतलब होता है गाय वैसे, लेकिन श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है गर्दभासुर, वहां पे धेनु का असुर का नाम लिखा है गर्दभासुर। प्रभुपाद ने भी शायद कृष्णा बुक में यहां कई प्रभुपाद के प्रवचन हमने सुना है, हम देख सकते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गर्दावासुर, कि गर्दावासुर ने जो है क्या हुआ था, ताल वन में आतंक मचाया हुआ था, तो एक गधे के रूप में था, और साथ में उनके और भी सारे असुर मित्र थे, वो भी गधे के रूप में वहां रहते थे। तो ये वहां पर तंग करते थे, कोई भी वहां पर आ जाता तो उसको मार देते थे। इसलिए ये बोले, हे राम, हे कृष्ण, धेनु अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना रखा है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसा ही रूप धारण कर रखा है और वह उसी के समान बलशाली है। धेनु का असुर ने जीवित मनुष्य को खा लिया है। तो ये सब जो है पशु ही नहीं, मनुष्य भी खा लेते थे। कैनिबॉल्स कहा जाता है जिनको, आज की भाषा में कैनिबॉल्स। कैनिबॉल का मतलब जानते हैं आप? नोएडा में भी कोई कैनिबॉल घूम रहा है, किसी ने बताया, अभी नहीं, पहले आया था न्यूज़पेपर में, आया कैनिबॉल है। तो वो क्या करता है कि मनुष्य के शरीर से मनुष्य के अलग अलग भाग को खाता है, उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसे कई पृथ्वी में कई हैं, अफ्रीका में के जंगलों में कई पाए जाते हैं, आदिवासी जो होते हैं वो मनुष्य को ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जीवित मनुष्य को खा लिया है, इसलिए सारे लोग तथा पशु ताल वन जाने से डरते हैं। हे शत्रु अंता, पक्षी तक उड़ने से डरते हैं, पक्षी तक वहां उड़ने से डरते हैं। ताल वन में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं छका। ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम अभी भी सूंघ सकते हैं। तो मित्र सब चाहते थे ये ताल वन के जो ताल वृक्ष के ऊपर जो फल लगे हैं बहुत स्वादिष्ट हैं, उसकी गंध यहाँ तक आती है और हमारी बड़ी इच्छा होती है खाने के लिए, लेकिन हम क्या करें, हमें बड़ा डर लगता है, वहां जाएंगे तो ये धेनु का सुर हमें कहीं मार ना दे। तो आप कुछ करो ना, आपने तो बहुत सारे असुरों का वध किया है, हमने देखा है बचपन से आप करते आए हैं, है ना, बहुत सारे असुरों का वध करते आए हैं। तो इस प्रकार, हे कृष्ण, आप हमारे लिए विफल ला दें, हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यंत आकृष्ट है, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि विचार अच्छा है तो चलिए उस तालवन में चले, अगर आपका विचार अच्छा है तो हम उस तालवन में चलते हैं। अपने प्रिय मित्रों के शब्द सुनकर कृष्ण तथा बलराम हंस पड़े, उनको हंसी आ गई, उन्हें खुश करने के लिए वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ ताल वन के लिए रवाना हो पड़े। अब सखा लोग प्रार्थना करें, आग्रह करें, तो कृष्ण बलराम कैसे मना करेंगे? अपने भक्तों के लिए अपने ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए कृष्ण कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो बलराम सबसे पहले तालवन में प्रविष्ट हुए, तब अपने दोनों हाथों से मतवाले हाथी की सी शक्ति लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे, जिससे ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे। तो उन वृक्षों को जोर जोर से हिलाया बलराम जी ने, उन ताल वृक्षों को, है ना। और बलराम जी जब हिलाएंगे तो फिर क्या होगा, वृक्षों की हालत क्या होगी, है ना। वैसे ही बलराम है, वो आध्यात्मिक बल भी है और भौतिक बल भी है, हर प्रकार का बल है उनके पास। गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर, यहां पे लिखा है गर्दव असुर, भागवत में लिखा है गर्दव असुर धेनुक पृथ्वी तथा वृक्षों को कपाता हुआ आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। वह बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा और की छाती पर अपने पिछले पैरों के खुरों से कठोर वार किया। पिछले जो पैरों के खुरों से मारा, गधा ऐसे मारता है ना, पिछले पैरों से मारता है। गधा जब दुलत्ती देता है, गधी जब दुलत्ती देती है गधे को, जब घास खाकर, घास खाने के बाद या मेहनत करने के बाद, या घास खाने की इच्छा से या घास खाने के बाद वो गधी के पास जाता है, तो गधी इसी तरह से दुलत्ती मारती धाड़ को। तो तत्पश्चात धेनुक जोर से रेंगता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा, तो उनकी छाती पर अपने, तो तत्पश्चात धेनुक जोर से रेंगता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। हे राजन, क्रुद्ध गधा फिर से बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। तत्पश्चात क्रोध से रेंगते हुए उस असुर ने उन पर दुलत्ती चलाई। बलराम ने धेनुक के खुर पकड़े, उसे एक हाथ से घुमाया ऐसे। तो बलराम जी ने क्या किया, उन्होंने धेनुक के खुर ऐसे पकड़े और ऐसे घुमाया, जैसे कोई पतंग उड़ाता है, है ना, या उसको क्या कहते हैं हम लोग, कुछ फेंकते हैं ना, तो याद नहीं आ रहा, वो हम लोग बचपन में खेलते थे, फ्रिस्बी, फ्रिस्बी, हाँ याद दिला, बहुत सालों के पास सुन रहे हैं, फ्रिस्बी, तो फ्रिज भी हम लोग खेलते थे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे, हम लोगों के लिए जितना आसान होता है उस, तो फ्रिज भी को फेंकना या किसी ऐसी छोटी वस्तु को फेंकना, तो बलराम जी भी बड़े आसानी से उन्होंने उस धेनु के एक पांव को पकड़ा और जोर से ऐसे घुमाया, है ना, और जोर से घुमाकर ताड़ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वह असुर मर गया। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा तो वृक्ष हिलने लगे। इस विशाल वृक्ष के पास का एक अन्य वृक्ष भी हिला और असुर के भार के कारण टूट गया। इसके निकट का वृक्ष भी इस तरह हिलकर टूट गया और कई ऐसे वृक्ष गिर गए, एक के बाद एक वृक्ष जो है गिर पड़ा। जंगलों में ऐसे ही आग लगती है, जब एक वृक्ष दूसरे वृक्षों से टकराते हैं तब जो है आग निकलती है जंगलों में। इस तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। बलराम द्वारा इस गर्दव असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सारे वृक्ष हिलने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे, मानो प्रबल झंझा के द्वारा झकझोरे गए हो। हे परीक्षित, बलराम को अनंत भगवान एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता मान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। निस्संदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका है, जैसे हमने बताया अनंत शेष के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका है, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कि सरसों का बीज रख दिया हो उनके सर पर, इतना हल्का लगता है अनंत शेष को, तो है ना, पूरा ब्रह्मांड धारण करते हैं। जिस तरह बना हुआ वस्त्र तानों बानों पर टिका रहता है, धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गर्दव असुर उसकी मृत्यु देखकर अत्यंत क्रोध उठे और वो सारे पहुंच गए, और जितने भी वहां गधे थे, जो असुर थे गधे के रूप में थे, वो सब वहां पहुंच गए आक्रमण करने के लिए। कृष्ण बलराम पर आक्रमण करने के लिए वहां पर पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो फिर क्या हुआ, जब असुर ने आक्रमण किया, कृष्ण बलराम ने उनकी पिछली टांगों से पकड़ पकड़ कर उन सबों को ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। उस सबको उठा उठा कर ऐसे फेंकने लगे, है ना, एक एक करके। तो कृष्ण बलराम के लिए तो क्रीड़ा थी, लीला इसको कहते, इसलिए इसको कहते लीला, है ना। इस तरह फलों के ढेरों से तथा ताड़ वृक्षों की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के मृत शरीर से ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी, मानो बादलों से आकाश अलंकृत हो। दोनों भाइयों का यह सुंदर कर्तव्य लीला सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्च प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा से गीत गाए तथा स्तुतियां की। जिन मन में धेनुकासुर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताड़ वृक्ष से फल खाने लगे। अब गौएं भी वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो सारे असुर और राक्षस हैं, कल हम वर्णन करेंगे किस तरह से ये जो असुर और राक्षस हैं इनकी तुलना हमारे मन में जो भरे हुए अनर्थ हैं उनसे की गई है। तो ये सारे जो असुर हैं अनर्थ हैं और इन अनर्थों का वध करने का जो उद्देश्य है ये बताना चाह रहे हैं भगवान कि जब तक ये अनर्थ दूर नहीं होंगे, जब तक ये असुरों का संहार नहीं हो जाएगा जो हमारे मन के भीतर छुपे हैं, तब तक हमें ब्रज में वास नहीं मिल सकता। ठाकुर भक्तिरोध ने चैतन्य शिक्षामृत में इस प्रकार के 21 अनर्थों का वर्णन किया है और कई ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने ये बताया है 71 ऑब्स्टिकल्स बताए हैं, यानी कि 70-71 अनर्थ ऐसे हैं जब तक इन अनर्थों से निवृत्त नहीं होते हैं हम ब्रज में जाकर भजन नहीं कर सकते हैं। तो इन अनर्थों को नष्ट करना होगा। तत्पश्चात कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण जिनके यश को सुनना और जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर ब्रज लौट आए। रास्ते पर उनकी आज्ञाकारी अनुयायी ग्वाल बालों ने उनका यश का गान किया। तो इस प्रकार ये लीला यहाँ पर संपन्न हुई जिसमें बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया और अपने बल का प्रदर्शन किया। तो हम भी अपने आध्यात्मिक बल का प्रदर्शन कर सकते हैं, किस लिए? इन अनर्थों को भगाने के लिए। और ये आध्यात्मिक बल हमें कहाँ से प्राप्त होगा? गुरु से प्राप्त होगा, हरि नाम से प्राप्त होगा। जितना अधिक हम लोग हरि नाम ध्यान पूर्वक लेंगे और जितना अधिक हम लोग गुरु की सेवा में लगेंगे, ये जो असुर हैं अनर्थ हैं जो हमारे मन में निवास कर रहे हैं इन सब का संहार होगा और फिर क्या होगा, हृदय में हम लोग भगवान के प्रति उत्तमा भक्ति जागृत कर पाए। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए और इसीलिए श्रील प्रभुपाल ने ये संस्था बनाई है। प्रभुपाल स्पष्ट लिख रहे हैं एक जगह पर कि इस संस्था को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है कि संस्था के द्वारा हम भक्तों को अवसर प्रदान कर रहे हैं पूरे पृथ्वी में हम अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो मंदिर आकर इन केंद्रों में आकर भगवान के बारे में सुन सकें और उनका कीर्तन कर सकें। यही संस्था का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य होना नहीं चाहिए हमारा। श्रवण और कीर्तन, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें और उनका गुणगान करें, प्रचार करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए प्रभुपाल ने ये संस्था स्थापित की है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। श्री कृष्ण भावना अमृत हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इस भावना अमृत को कैसे प्राप्त करेंगे? श्रवण कीर्तन के माध्यम से। जब हम भक्तों के संग में रहकर कृष्ण कथा का आस्वादन करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हृदय के जितने भी कलमश हैं वो दूर होंगे और फिर हम लोग वास्तव में शुद्ध भक्ति के धरातल पर पहुँचेंगे। हरे कृष्ण। श्री श्री कृष्ण बलराम की, बलराम जयंती महोत्सव की, समवेत भक्त वृंद की, घोर प्रेमानंद की।